एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो दुनिया की कह सकते हैं लगभग एक चौथाई आबादी के लिए बहुत मायने रखती है।
हाँ, कुरान, इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ।
बिल्कुल, और हमारी ये चर्चा ये उन सारांशों पर आधारित है जो हमें मिले हैं।
हाँ, ये कुरान के जो मुख्य विचार हैं, उसकी जो बनावट है और उसका पैगाम, उसको समझने में मदद करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम इसके सार तक पहुंच पाएं।
और देखिए, आज की दुनिया में कितनी संस्कृतियां, कितनी विचारधाराएं घुलमिल रही हैं। तो ऐसे में एक ग्रंथ जो अरबों लोगों की जिंदगी को दिशा दिखाता है, उसे समझना तो जरूरी हो ही जाता है।
बिल्कुल, इससे आपसी समझ बढ़ती है ना।
हाँ, और दुनिया को भी बेहतर जान पाते हैं। हाँ? और वो सांस्कृतिक साक्षरता भी।
सही कहा, तो चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखी बात से कि कुरान का लेखक कौन है।
हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। इस्लामी मान्यता के अनुसार इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है।
अच्छा,
माना जाता है कि ये सीधे ईश्वर यानी अल्लाह का कलाम है, उनके शब्द।
तो फिर पैगंबर मोहम्मद जिन पर ये उतरा, उनकी भूमिका क्या थी?
उन्हें लेखक नहीं माना जाता, बल्कि वो एक संदेशवाहक थे, रिसीवर कह सकते हैं। उन्हें ईश्वरीय संदेश मिला, जिसे अरबी में वही कहते हैं। ये फरिश्ते जिब्राइल के जरिए मिला।
अच्छा,
और ये सिलसिला कोई एक दो दिन का नहीं था, करीब 23 साल चला।
30 साल, लगभग 610 ईस्वी से 632 ईस्वी तक, है ना, उनकी मृत्यु तक।
हाँ बिल्कुल, और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भी जानना अहम है। उनका जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी के आसपास। कुरैश कबीले से थे।
हाँ, सुना है वो पैगंबर बनने से पहले ही बहुत ईमानदार माने जाते थे।
बिल्कुल, लोग उन्हें अल अमीन कहते थे, मतलब भरोसेमंद।
अच्छा,
और एक और बात जो अक्सर कही जाती है कि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे,
हाँ ये बात तो है।
तो मानने वालों के लिए ये बात कुरान के भाषा की असाधारणता का सबूत बन जाती है कि ऐसा कलाम कोई अनपढ़ इंसान खुद कैसे बना सकता है। जरूर ये ईश्वरीय है।
अच्छा, तो जब वो दुनिया से चले गए,
हाँ
तो ये सारे संदेश बिखरे हुए थे,
हाँ
उन्हें जमा कैसे किया गया?
हाँ ये बड़ा काम था। उनके बाद जो शुरुआती खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और उनके जो करीबी साथी थे,
जैसे जैद इब्न थाबित, वो लिखने वालों में से थे शायद।
हाँ बिल्कुल, उन सब ने मिलकर इसे एक किताब की शक्ल दी, मानकीकरण किया।
ताकि जो असल संदेश था वो बदले नहीं।
एकदम सही, ताकि आने वाली नस्लों तक वो बिना किसी बदलाव के पहुंचे।
इसीलिए मुसलमान इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मानते।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो इसे ईश्वर का आखिरी और हमेशा काम आने वाला मार्गदर्शन मानते हैं, पूरी इंसानियत के लिए, हर दौर के लिए।
तो फिर कुरान असल में है क्या, मतलब सिर्फ एक धार्मिक किताब?
नहीं, सिर्फ धार्मिक किताब कहना शायद अधूरा होगा। ये इस्लाम की बुनियाद तो है ही, लेकिन ये एक तरह से पूजा पद्धति भी बताता है, कानून भी,
दर्शन भी,
और समाज कैसे चले ये भी।
हाँ, सब कुछ,
सामाजिक मार्गदर्शन भी। और इसका नाम ही देखिए, कुरान, ये करा से निकला है, जिसका मतलब है पढ़ना या पाठ करना।
तो रेसिटेशन, मतलब इसके मौखिक रूप पर बहुत जोर है।
बिल्कुल, और इसका जो मुख्य मकसद है वो है तौहीद, ईश्वर की एकता।
हाँ, कि ईश्वर सिर्फ एक है, कोई साझीदार नहीं, कोई औलाद नहीं।
एकदम, और ये इंसान और ईश्वर के बीच एक सीधा रिश्ता बनाने की कोशिश है, बिना किसी बिचौलिए के। साथ ही एक इंसाफ पर आधारित एक नैतिक समाज का खाका भी पेश करता है।
और वो जो जिंदगी के बड़े सवाल होते हैं, हम कौन हैं, क्यों हैं,
हाँ, उनके जवाब देने की कोशिश भी करता है, मरने के बाद क्या होगा वगैरह।
और ये किसके लिए है, मतलब उतरा तो 7वीं सदी के अरब में।
हाँ, लेकिन इसका संदेश पूरी मानवता के लिए बताया जाता है, तो इसके पाठक सिर्फ उस जमाने के अरब नहीं, बल्कि हर जमाने के दुनिया भर के लोग हैं।
तो ये पढ़ने वाले को कैसी यात्रा पर ले जाता है?
ये शुरू होता है अपने आसपास की दुनिया पर सोचने से। कुरान बार बार कहता है आसमान, जमीन, पहाड़, समंदर, इन सब में ईश्वर की निशानियां हैं, आयात।
अच्छा,
निशानियां,
हाँ,
उन पर गौर करने को कहता है, फिर पिछले नबियों, उनकी कौमों के किस्से सुनाता है,
सबक लेने के लिए।
हाँ, ताकि उनसे सबक सीखा जाए। ये एक तरह की रूहानी और जहनी बेदारी है, आध्यात्मिक और बौद्धिक जागृति।
और इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा लगता है, आपने कहा पूजा पाठ, कानून, समाज।
हाँ, इसमें ईश्वर के गुण, अनदेखी दुनिया जैसे फरिश्ते, जिन, इनकी बातें हैं।
पैगंबरों के किस्से भी।
आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा।
बिल्कुल।
फिर मौत के बाद की जिंदगी, कयामत का दिन, जन्नत, जहन्नम, नैतिकता, अखलाक
और सामाजिक नियम भी,
जैसे शादी, तलाक, विरासत, व्यापार, हाँ, लेन देन, अपराध, सजा और इबादत के तरीके, नमाज, रोजा, जकात, हज।
लगता है जिंदगी का कोई पहलू बचा ही नहीं।
कह सकते हैं ये जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है।
चलिए अब जरा इसकी बनावट को देखते हैं। इसमें 114 हिस्से हैं।
हाँ,
सूरे।
हाँ, सूरे यानी अध्याय। पहली सूरे को छोड़ दें तो बाकी लगभग लंबाई के घटते क्रम में है।
अच्छा, सबसे लंबी पहले, फिर छोटी होती जाती है।
हाँ, और हर सूरे में छोटी छोटी आयतें हैं, वर्सेस।
और आपने मक्की और मदनी सूरों का जिक्र किया था, ये क्या फर्क है?
ये बहुत अहम फर्क है। ये बताता है कि सूरह पैगंबर की जिंदगी के किस दौर में उतरी, मक्का में या मदीना में।
इससे अंदाज और मौजू में भी फर्क आता है।
हाँ बिल्कुल। मक्की सूरें लगभग 86 वो हैं जो मक्का से मदीना जानी यानी हिजरत से पहले उतरी।
तो उनका अंदाज कैसा होता है?
वो आमतौर पर छोटी होती हैं, भाषा ज्यादा काव्यात्मक, लयबद्ध होती है।
और जोर किस पर होता है?
जोर बुनियादी बातों पर होता है। ईश्वर एक है, तौहीद, मरने के बाद हिसाब होगा, कयामत, पैगंबर का मिशन, मूर्ति पूजा गलत क्यों है,
जन्नत जहन्नम का जिक्र भी।
हाँ, उनका बड़ा जोरदार बयान होता है। कायनात की निशानियों का जिक्र होता है।
अच्छा, और मदनी सूरे वो अलग हैं?
हाँ, मदनी सूरे लगभग 28 हिजरत के बाद मदीना में उतरी। अब मुसलमान वहाँ एक समुदाय की तरह रह रहे थे,
तो फोकस बदल गया होगा।
बिल्कुल, फोकस समाज बनाने, नियम कानून तय करने पर ज्यादा आ गया। ये सूरे अक्सर लंबी होती हैं, भाषा ज्यादा गद्दे जैसी।
इनमें क्या बातें मिलती हैं?
इनमें आपको मिलेंगे शादी ब्याह के नियम, विरासत, पैसों का लेन देन, जैसे सूद यानी ब्याज की मनाही, रिबा।
अच्छा।
जंग और अमन के नियम, दूसरे मजहबों के लोगों जैसे यहूदियों, ईसाइयों, उनसे कैसे रिश्ते हों, और खुद मुस्लिम समाज के अंदर जो पाखंडी, मुनाफिक थे, उनसे निपटने की बातें।
चलिए कुछ खास सूरों की मिसालें लेते हैं। सबसे पहले सूरे अल फातिहा, शुरुआत।
हाँ, अल फातिहा, इसे कुरान का सार भी कहते हैं, हर नमाज में पढ़ी जाती है।
इसमें क्या है?
इसमें अल्लाह की तारीफ है, वो सारे जहानों का पालने वाला है, रब्बुल आलमीन, बेहद मेहरबान, रहमान, रहम करने वाला, रहीम, हिसाब के दिन का मालिक।
और फिर दुआ है?
हाँ, बंदा दुआ करता है कि अल्लाह उसे सीधे रास्ते पर चलाए, सिरात अल मुस्तकीम।
फिर वो सबसे लंबी सूरा, सूरा अल बकरा, गाय।
हाँ, अल बकरा, ये मदनी सूरा है और इसमें समझ लीजिए बहुत सारे विषय हैं।
जैसे?
जैसे ईमान वाले कैसे होते हैं, काफिर अविश्वासी कैसे, मुनाफिक पाखंडी कैसे, इस्लाम के जो 5 स्तंभ हैं, नमाज, जकात, रोजा, हज, उनके बारे में नियम।
और सामाजिक नियम भी थे इसमें शायद।
हाँ, पैसों का लेन देन, ब्याज की मनाही, कॉन्ट्रैक्ट, शादी, तलाक, खाने पीने के नियम,
हलाल हराम वगैरह।
बिल्कुल। और इसमें बनी इसराइल और पैगंबर मूसा का किस्सा भी है सबक के लिए।
और वो मशहूर आयत अल कुर्सी भी इसी में है।
हाँ, आयत अल कुर्सी, थ्रोन वर्स, अल्लाह की अजमत, ताकत, इल्म और बादशाहत का जबरदस्त बयान है वो।
एक छोटी सूरह है अल इखलास, निष्ठा।
हाँ, अल इखलास सिर्फ 4 आयतें, लेकिन कहते हैं 1/3 कुरान के बराबर है।
ऐसा क्यों?
क्योंकि ये तौहीद का, समझिए, निचोड़ है। कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है, न वो किसी की औलाद, और कोई उसके बराबर नहीं। एकेश्वरवाद का बिल्कुल साफ बयान।
फिर वो कहानी वाली सूरा, यूसुफ।
हाँ, सूरे यूसुफ, पैगंबर जोसेफ की कहानी। ये अकेली सूरा है जिसमें एक पैगंबर की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक एक साथ है।
उनके ख्वाब, भाइयों का धोखा।
हाँ, मिस्र में गुलामी, वो जुलेखा वाला वाकया, जेल जाना, फिर ख्वाबों की ताबीर से बादशाहत तक पहुँचना,
और आखिर में परिवार से मिलना।
बिल्कुल, कुरान इसे कहता है अहजन अल कसस, सबसे बेहतरीन किस्सा।
इसमें सबक क्या है?
सब्र का, तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसे का, अल्लाह की छुपी हुई हिकमत का, और आखिरकार सच्चाई की जीत का।
एक और सूरा है मरियम, हजरत ईसा की माँ के नाम पर।
हाँ, सूरे मरियम अपनी काव्यात्मक सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसमें जकरिया और यहया,
जॉन द बैप्टिस्ट
के जन्म का चमत्कार है।
और मरियम और ईसा का जन्म बिना पिता के।
हाँ, خاص طور پر وہ واقعہ، یہ عیسیٰ کو اللہ کا ایک بڑا پیغمبر اور بندہ مانتا ہے۔
لیکن ایشور کا بیٹا یا ایشور نہیں مانتا؟
نہیں، یہ بات صاف طور پر کہی گئی ہے۔ یہ سورہ اللہ کی قدرت اور رحمت پر زور دیتی ہے۔
اور ایک وہ بہت چھوٹی سورہ العصر، گزرتا وقت۔
ہاں، العصر، صرف 3 آیتیں پر مطلب بہت گہرا۔
کیا مطلب ہے؟
زمانے کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے جن میں 4 باتیں ہوں۔
کون سی 4 باتیں؟
1 جو ایمان لائے، 2 نیک کام کیے، 3 ایک دوسرے کو حق یعنی سچائی کی نصیحت کی، اور 4 ایک دوسرے کو صبر یعنی دھیریہ کی صلاح دی۔
یہ تو جیسے کامیابی کا فارمولا ہو گیا۔
ہاں، کہہ سکتے ہیں ایک مکمل فارمولا۔
تو ان سوروں اور مثالوں سے جو بڑے پیغام نکل کر آتے ہیں ان پر بات کریں۔ سب سے پہلے تو وہی توحید۔
ہاں، توحید، اللہ کا ایک ہونا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ماننے کی بات نہیں، جینے کا طریقہ ہے۔
مطلب؟
مطلب انسان صرف ایک اللہ کے آگے جھکے، اسی سے امید رکھے۔ یہ سوچ اسے ہر طرح کی غلامی سے آزاد کرتی ہے،
رسم و رواجوں کی غلامی، لوگوں کے ڈر کی۔
ہاں، یا اپنی ہی خواہشوں کی۔ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو یہ اندھوشواسوں سے بچاتا ہے، دنیاوی طاقتوں پر غلط نربھرتا سے روکتا ہے۔
دوسرا بڑا پیغام ہے پیغمبری اور مارگ درشن کا، نبوت اور رسالہ۔
بالکل، قرآن کہتا ہے اللہ نے ہمیشہ انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔
اور سب کا پیغام ایک ہی تھا۔
ہاں، مول پیغام ایک تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، زمین پر انصاف قائم کرو۔
اور محمد آخری نبی اور قرآن آخری مارگ درشن۔
ہاں، جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اتہاس سے سیکھو اور صحیح مارگ درشن کی قدر کرو۔
پھر یہ سوال آتا ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے؟
قرآن کہتا ہے عبادت کے لیے، اللہ کے بندگی، اس کی آگیا ماننے کے لیے۔
لیکن ہمیں آزاد مرضی بھی تو دی ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت۔
ہاں بالکل، اسی لیے ہم اپنے کاموں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے،
اور قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔
صحیح، یہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کراتا ہے، سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہمارے کاموں کا نتیجہ کیا ہوگا۔
ایک اور بات ہے، اللہ کے انصاف اور رحمت کی، عدل اور رحمہ۔
ہاں، وہ پورا انصاف کرنے والا ہے، العدل، لیکن اس کی رحمت، اس کی دیا، اس کے غصے پر حاوی ہے۔ وہ الرحمن الغفور ہے،
پرم دیالو، بے حد معاف کرنے والا۔
بالکل، جنت اور جہنم کا ذکر چیتاونی بھی ہے اور اچھے کاموں کی پریرنا بھی۔ پر سب سے اہم یہ کہ توبہ یعنی پشتاوا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔
تو اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ غلطیوں سے سیکھیں، معافی مانگیں،
اور دوسروں کے ساتھ بھی نرمی اور رحم کا برتاؤ کریں۔
آپ نے کہا تھا کہ قرآن صرف پرسنل عبادت کی بات نہیں کرتا، سماج کی بھی بات کرتا ہے، شریعہ۔
ہاں، شریعہ، ایک پورا جیون ودھان جس کا مقصد ہے ایک انصاف والا سماج بنانا۔ اس میں پریوار کے نیم ہیں، مالی معاملات ہیں جیسے زکوٰۃ، سود کی مناہی،
حکومت کے سدھانت بھی۔
ہاں، سماج میں قسط یعنی نیائے اور نشپکشتا قائم کرنے پر بہت زور ہے۔ غریبوں، یتیموں، کمزوروں کا خیال رکھنے کی بار بار ہدایت ہے۔
اور امہ کا تصور یعنی ویشوک بھائی چارہ۔
ہاں، دنیا بھر کے مسلمانوں کا بھائی چارہ۔ یہ باتیں آج بھی ہمیں ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے پریرت کرتی ہیں۔
اور ایک آخری اہم بات تھی، کائنات کو اللہ کی نشانیاں سمجھنا، آیات۔
ہاں، قرآن بار بار کہتا ہے دیکھو آسمانوں کو، زمین کو، موسم کیسے بدلتے ہیں، کتنے طرح کے جانور ہیں، پیڑ پودے ہیں،
ان میں نشانیاں ہیں۔
ہاں، سوچنے والوں کے لیے یہ اللہ کی طاقت، اس کی حکمت، اس کی کاریگری کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ نظریہ ہمیں قدرت کی عزت کرنا سکھاتا ہے،
اور علم حاصل کرنے، چیزوں کو جاننے کے لیے اکساتا ہے، ویگیانک جگیاسا۔
بالکل،
واقعی قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جو ان باتوں کو بڑے یادگار طریقے سے کہتی ہیں۔ کچھ مثالیں دیکھیں۔
ضرور، وہ پہلی آیت جو اتری، پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، سورہ الالک 96.1۔ پہلا حکم ہی پڑھنے کا۔
ہاں، یہ علم اور تعلیم کی اہمیت بتاتا ہے۔
اور وہ آیت الکرسی، سورہ البقرہ 255، اللہ کی شان کا کیا زبردست بیان ہے۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو تھامنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سب پر چھائی ہوئی ہے، और वो बहुत बुलंद अजमत वाला है।
ये तौहीद का एहसास कराती है।
और इंसानी बराबरी पर वो आयत सूरह अल हुजुरात 49.13, ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। हकीकत में अल्लाह की नज़र में तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला तकवा वाला है।
ये तो नस्ल, रंग, कौम की बुनियाद पर बड़प्पन को खारिज करती है।
बिल्कुल, कहती है ये फर्क सिर्फ पहचान के लिए है, बड़ाई का मयार सिर्फ परहेजगारी यानी तकवा है।
और पैगंबर मोहम्मद के मिशन के बारे में वो आयत सूरह अल अंबिया 21.107,
हाँ, और ए मोहम्मद, हमने तुम्हें सारे जहानों के लिए सिर्फ एक रहमत, दया बनाकर भेजा है। ये बताता है कि उनका लाया पैगाम कोई बोझ नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत और हिदायत है।
और मजहबी आजादी पर वो आयत सूरह अल बकरा 256,
दीन या धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं, सही रास्ता गलत रास्ते से बिल्कुल साफ हो चुका है। ये साफ करता है कि ईमान दिल से मानने की चीज है, जबरदस्ती की नहीं।
ये तो हुई गहरी बातें, उसूल, लेकिन आम जिंदगी में इन्हें कैसे उतारें? ये सिर्फ पढ़ने की किताब तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो 5 वक्त की नमाज, वो जिंदगी में अनुशासन लाती है, वक्त की पाबंदी सिखाती है
और अल्लाह से रिश्ता जोड़ती है।
हाँ, कुरान को समझकर पढ़ना, उस पर गौर करना, तदब्बुर, ये दिल को सुकून देता है, जिंदगी को दिशा।
और वो सब्र, शुक्र, तवक्कुल।
हाँ, सब्र यानी धीरज, शुक्र यानी आभार, तवक्कुल यानी भरोसा, ये मुश्किलों का सामना करने में मददगार होते हैं।
और नैतिकता किस स्तर पर?
ईमानदारी, माँ बाप के इज्जत, पड़ोसियों का ख्याल, गरीबों की मदद, ये सब बुनियादी तालीम है।
पीठ पीछे बुराई, चुगली से मना किया गया है।
हाँ, गीबत और चुगली से, कारोबार में धोखा नहीं देना, नाप तौल में कमी नहीं करनी, वादे पूरे करने हैं।
सामाजिक स्तर पर ज़कात का आपने बताया, वो अनिवार्य दान है।
हाँ, वो समाज में दौलत को सर्क्यूलेट करता है, गरीबों की मदद करता है। इंसाफ पर जोर है, सिर्फ अदालत में नहीं, आपसी रिश्तों में भी।
परिवार के लिए भी नियम है।
हाँ, मियाँ बीवी के हक और जिम्मेदारियाँ, ताकि घर का निज़ाम सही चले।
और बौद्धिक तौर पर?
हाँ, वो सोचने समझने की दावत।
हाँ,
वो इल्म हासिल करने पर जोर है, अक्ल इस्तेमाल करने पर, और सारी इंसानियत को एक बताकर भाईचारे का पैगाम है,
जो आज के दौर में बहुत जरूरी है।
बिल्कुल,
नस्लवाद और नफरतों का जवाब है इसमें।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुरान से सबसे बड़ा सबक क्या है?
शायद ये कि अपनी पूरी जिंदगी को एक मेहरबान मालिक, एक दयालु ईश्वर के एहसास के साथ कैसे जिया जाए।
एक बामकसद जिम्मेदार जिंदगी।
हाँ, और रूहानी तौर पर पुरसुकून। ये बताता है कि ईमान सिर्फ दिल में रखने की चीज नहीं, उसे अमल में, एक्शन में बदलना जरूरी है।
सही कहा, मुझे भी ये बात बहुत प्रभावित करती है कि ये दीन को दुनिया से अलग नहीं करता।
हाँ, इसका समग्र होलिस्टिक नजरिया है। आपकी पर्सनल इबादत का असर आपके अखलाक, आपके काम, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियों में दिखना चाहिए।
ईमान मतलब नेक अमल, अच्छा व्यवहार और समाज में इंसाफ के लिए कोशिश। बिल्कुल, और मानने वालों के लिए इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो इसे इंसानी सोच नहीं बल्कि सीधे ईश्वर का मार्गदर्शन मानते हैं।
इसीलिए ये उनके लिए पुरानी किताब नहीं बल्कि हर जमाने के लिए एक जिंदा हिदायत है।
हाँ, रहमत का जरिया, कामयाबी की कुंजी, जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालने का तरीका।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को।
हाँ,
आज जब दुनिया इतनी चुनौतियों से जूझ रही है, नाइंसाफी, पर्यावरण संकट, समुदायों में तनाव, तो कुरान का ये नजरिया जहां व्यक्तिगत रूहानियत और सामाजिक इंसाफ साथ साथ चलते हैं, ये हमें इन मुश्किलों से निपटने में कैसे राह दिखा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।